ओम शांति। संध्या काल की बेला में आज हमारे बीच उपस्थित हैं जिनके लिए कहूंगी कि प्रतिभा अपनी राह स्वयं निर्धारित कर लेती है और अपना दीप स्वयं ले चलती है। तो ऐसे विशेषताओं से, गुणों से संपन्न, उदार दिल, सरल जिनका व्यक्तित्व, गंभीरता, निरंकारता, मितभाषी, ईमानदार, हमारे आदरणीय राजयोगी सतीश भाई जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं और आपको नमन करते हैं। आदरणीय भाई जी का जन्म उत्तर प्रदेश में ही हुआ। 55 ईयर पहले बाबा ने बाल्यकाल में ही इनको पूरे परिवार के साथ तराशा। साथ में लगभग 45 ईयर से आपने हेडक्वार्टर में आकर अपनी सेवाएं प्रदान करना शुरू किया। यज्ञ का कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे बाप दादा के मिलन हो, लेकिन मधुरवाणी ग्रुप जब तक गीत नहीं गाता है तब तक कार्यक्रम का शुभारंभ नहीं होता है। आप उसके डायरेक्टर हैं और आपने 3000 से भी ऊपर कविताएं और गीत के आप लेखक और गायक भी रहे हैं। साथ में 300 से ऊपर आपके जो गीत हैं, बड़े बड़े गायकों ने, सिंगरों ने उनको गाया है, चाहे वो महेंद्र कपूर जी हों और चाहे आशा भोसले आदि आदि। आप आर्ट एवं कल्चर विंग के आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। और भी विशेषताएं जुड़ी हुई हैं आपके साथ। भाई जी साधारण लगते हैं लेकिन लगभग 15 वर्षों से आप फॉरेनर्स भाई बहनों को हिंदी सिखाने का भी सेवाएं देते हैं। साथ में 20 वर्षों से न्यूज़पेपर और अनेक मैगजीनों में आपके आर्टिकल भी आते हैं, आप उन्हें लिखते हैं। आपको बाबा ने वरदान दिया था सेटिस्फाई, माना संतुष्ट मणि रहने का, ये आपकी विशेषता है। तो ऐसे आदरणीय भाई जी से आज हम सुनेंगे, संगम युग रूहानी मौजों का युग, तो कैसे मौज में जीना है, आज वो भाई जी हमें उसका अनुभव अपने अनुभवों के साथ हमारे साथ शेयर करेंगे। तो हम पुनः उनका स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सर्वप्रथम आप सबको निकट ही हमने दीपावली मनाई, तो दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। और आज तो बधाई ही देने का मन कर रहा है क्योंकि सीजन की शुरुआत लिए, प्रभु मिलन की प्यास लिए, दिल में अलौकिक साज लिए, प्यारा यूपी आया है, प्रभु मिलन करने और कराने, प्यारा यूपी आया है, दिवाली की उजियार लिए और दिल में प्यार ही प्यार लिए, यूपी आया है, यूपी आया है। एक बार जोरदार आप तालियों के साथ अपना स्वागत स्वीकार करें। संगम के सुख के आगे, संगम के सुख के आगे सतयुग का सुख भी क्या है, कहता है दिल हमारा अनुभव हमें हुआ है। संगम के सुख के आगे सतयुग का सुख भी क्या है, कहता है दिल हमारा, अनुभव हमें हुआ है। कितने हैं भाग्यशाली, मिला भाग्य का विधाता, भगवान हमको बेहद दिल तख्त पर बिठाता। इसी युग में हमको मिला है प्रभु के दिल का आसन, है तीन लोक से भी ऊंचा बड़ा सिंहासन, है तीन लोक से भी ऊंचा बड़ा सिंहासन, श्रृंगार शक्तियों से प्रभु ने अभी किया है, कहता है दिल हमारा, अनुभव हमें हुआ है। बाहों में लेके लोरी, बाहों में लेके लोरी हमें ज्ञान की सुनाता, पलकों से है उठाता, नजरों में है सुलाता। इसी युग में हमने पाया प्रभु के पुचकार प्यार प्यारा, ऐसा कहां मिलेगा वहां देवताओं द्वारा, ऐसा कहां मिलेगा वहां देवताओं द्वारा। आंचल में सारा जीवन भगवान के जिया है, कहता है दिल हमारा, अनुभव हमें हुआ है, अनुभव हमें हुआ है। क्या है अतींद्रिय सुख, क्या है अतींद्रिय सुख, पूछो गोप गोपियों से। क्या है अतींद्रिय सुख, पूछो हम गोप गोपियों से, मजा क्या प्रभु मिलन में हम राजयोगियों से। नजरें रहे ये हम पर हर पल रहे नजारा, ये हाथ साथ बाबा हर पल रहे तुम्हारा, बेहद का प्यार तुमने हमको अभी दिया है, कहता है दिल हमारा, अनुभव हमें हुआ है। संगम के सुख के आगे सतयुग का सुख भी क्या है, कहता है दिल हमारा, अनुभव हमें हुआ है, अनुभव हमें हुआ है। तो सर्वप्रथम संगम युग के सुहेजों के बीच में, सीजन के शुरुआत में सामने उपस्थित सभी विशेष विभूतियों का, दिव्य आत्माओं का दीपावली के खुशियां लेकर के पधारे हुए सीजन की शुरुआत करने के लिए, और आज के मुरली के अनुसार श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं का मस्तक पर त्रिभाग्य की रेखाएं अनुभव करने वालों का, और परमात्म पालना और परम शिक्षक की शिक्षा और सद्गुरु के वरदानों की भाग्य की चमकती हुई रेखा सितारा अनुभव करने वालों का, और अपने ईश्वरीय संस्कार से दैवी संस्कार संसार बनाने वालों का, दैवी संसार बनाने वालों का, और दुआओं द्वारा सेवा में वृद्धि करने वालों का, और ईश्वरीय पालना का अनुभव करने वालों का। वाह बाबा वाह, वाह मेरा बाबा वाह, वाह रे भाग्य, वाह रे ड्रामा, वाह बाबा बाबा के गीत गाने वालों का, और सारे उड़ती कला में उड़ने वालों का, उड़ती कला में उड़ते रहने वालों का, सबको दुआएं देने वालों का, ना उड़ने के कारण को जानने वालों का, कारण का निवारण करने वालों का, और उसको रियलाइज रिवाइज करना, दृढ़ संकल्प करने वालों का। दृढ़ संकल्प बार बार टूटता है, उसके कारण को जान करके उसका निवारण करने वालों का, ऐसे विशेष आत्माओं का, संगम युग में जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वालों का, कोई भी बंधन स्वीकार न करने वालों का, न देह का बंधन, न देह के संबंधों का बंधन, न कर्मेंद्रियों का बंधन, और न ही आदतों का बंधन, न स्वभाव का बंधन, न पुराने संस्कारों का बंधन, कोई भी बंधन में न बंधने वालों का, पूर्ति कला में उड़ने वालों का, सदैव खुश रहने वालों का, ईश्वरीय मर्यादाओं के आधार से आगे बढ़ने वालों का, तीव्र पुरुषार्थियों का, सहज योगियों का, चलन और चेहरे द्वारा पवित्रता की श्रेष्ठता का अनुभव कराने वालों का, और ईश्वरीय मौजों में संगम युग के सुहेज का अनुभव करने वालों का, और आज में उपस्थित इस क्लास में सभी भाई बहनों का मैं अपनी ओर से, पूरे बाबा दादी और सभी ईश्वरीय परिवार की ओर से आप सबका प्रथम मिलन की इस मौके पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। सब हैं बंधन मुक्त, सब संगम युग में बैठे हैं, संगम युग में बैठे हैं, रूहानी मौजों का, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रहे हैं। किसको किसको अनुभव है, किसको किसको अनुभव है, सबको अनुभव है। ऐसा कोई नहीं है जिसको अनुभव नहीं हो रहा है। जिनको अनुभव नहीं हो रहा है वो जरा हाथ उठाएं, जिनको अनुभव नहीं हो रहा है। सबको अनुभव हो रहा है, लगभग सब है, कोई कोई गलती से उठा रहे हैं, सोच रहे हैं कि शायद कुछ और कहा जा रहा है। तो सुनाने की जरूरत है आगे, अगर मौजों में आए तो सुनाएंगे आपको। हमारे अति आदरणीय ब्रजमोहन भाई जी ने बहुत समय पहले एक कहानी सुनाई थी, वो याद आ गई। कहते हैं एक कस्बे में, वहां पर मस्जिद में जुम्मे की जो वहां पर व्याख्यान होता है, प्रवचन होता है, जिसको तर्जुबानी कहते हैं, वो जब देते हैं तो उसको नमाजी जो है वो प्रवचन करने वाला वो पहुंचा नहीं, बीमार हो गया, तो दूसरे को मुकरर किया गया। जब वो पहुंचा सामने और जो बोलना शुरू किया तो यही पूछा सबसे कि आपको मालूम है कि मुझे किस टॉपिक पर बोलना है, तो सबने कहा नहीं मालूम नहीं कि आप किस पर बोलने वाले हैं। तो कहा जब आपको मालूम ही नहीं तो मुझे सुनाना क्या है, आमीन कह करके वो चला गया। फिर दूसरे जुम्मे पर शुक्रवार को वो दोबारा आया, सोचा गया कि भाई चलो इस हफ्ते नहीं हुआ अगले हफ्ते में हो जाएगा, तो दूसरे हफ्ते में गया और जब फिर बोलना शुरू किया तो बोलता है कि आप सबको पता है कि मुझे मैं किस टॉपिक पे बोलूंगा। तो सबको अनुभव हो गया था पिछली बार का कि जब ना बोला तो चला गया था, तो अब की बार बोला हाँ हाँ हम सबको पता है। कहा जब आपको पता है बोलना क्या, फिर वापस आमीन करके फिर चला गया। फिर सोचा गया चलो तीसरी बार भी देख लेते हैं, तो तीसरे जुम्मे पर जब आया तो फिर खड़ा होकर वही बोला आपको पता है मुझे किस पर बोलना है। तो लोगों का दो बार का अनुभव हो गया था, तो उनमें हाथ उठाने वालों ने आधा ने हाथ उठाया हाँ पता है, और आधा वालों को पता बोला कि हाँ नहीं पता है। तो कहा अच्छा जिसको पता है और जिसको नहीं पता उनको सुना दे, उनको बता दे आमीन, फिर करके चला गया। लेकिन हम सबको रूहानी मौजों का अनुभव है, और आप सबने हाथ भी उठाया, तो सबको रूहानी मौज, अलौकिक आनंद, संगम युग में जीने का आनंद, परमात्म पालना पाने का आनंद, भगवान से मिलने का आनंद, ईश्वरीय परिवार में आने का आनंद, ज्ञान का आनंद, योग का आनंद, सेवा को भी आनंदित होकर करने का आनंद, पल पल इतने आनंद मिले हैं, इतना अलौकिक मौज मिला है, इतनी खुशियां मिली हैं कि मैं नहीं समझता हूं कोई समझता होगा कि हमारा अनुभव नहीं है, सबको अनुभव है। फिर क्या बात है, करना क्या है? फिर जो अनुभव बराबर निरंतर नहीं रहता है उस अनुभव को निरंतर अनुभव करना है, वो हमसे छूटे नहीं। अगर संगम युग में सब कुछ प्राप्त करने के बाद, ईश्वरीय मिलन करने के बाद, परमात्म मिलन करने के बाद, आत्म अभिमानी बनने का अनुभव करने के बाद, निरंतर याद की अनुभूति करने का, ईश्वरीय स्नेह का ये अनुभव करने के बाद, और संस्कार परिवर्तन का भी, परिवर्तन केवल पुरुषार्थ नहीं, परिवर्तन से जो जीवन में परिवर्तन का अनुभव हुआ है, जो मिला है उसको पाने के बाद, और पवित्रता का आनंद मिलने के बाद, यदि फिर भी जीवन में कुछ कमी रहती है या हमारे मुख से निकलता है क्या करूं भैया, ये होता नहीं है, वो होता नहीं है, शरीर साथ नहीं देता है, घर वाले साथ नहीं देते हैं, हमारा भाग्य ही कुछ है, नसीब ऐसा है, जब इसको कोई कहता है तब बड़ा आश्चर्य होता है कि ये तो हम सब ब्राह्मणों के मुख से कतई नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो लोग कहेंगे कि भगवान के मिलने के बाद भी इनके ऊपर इतनी मुसीबत आ रही है, तो इससे तो अच्छा हम ही हैं जो बिना भगवान के हैं, बहुत मजे में हैं, दुनिया के लोग ही आनंदित हो जाते हैं। तो फिर क्या करना है, निरंतर संगम युग के सुहेज का आनंद मिलता रहे। मैं तो देखता हूं अपने अब जीवन के अनुभवों के द्वारा, ये हॉल में जहां मैं बैठा हूं यहीं पर बाप दादा आते हैं, कितने वर्षों वर्षों बाप दादा आते रहे, हम सब कितने मिलन मनाए, वर्षों वर्षों मिलन मनाए, सारी हम उस कालखंड के साक्षी दृष्टा हैं, उस कालखंड के हम सब दृष्टा हैं, देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, जिसमें भगवान का अवतरण हुआ, भगवान ने हमको अपना बना लिया, साथी बना लिया, विश्व परिवर्तन के कार्य में ले लिया। हम उस कालखंड में हैं जिसमें सृष्टि की प्रथम रचना, हमारी आदि रतन, समस्त दादियां जो अभी तो अव्यक्त हुई हैं, आने वाले दिनों में बड़ी उनकी और पूजा होगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम में से ही ज्यों ज्यों दिन गुजरता जाएगा, क्यों तू ऐसी विशेष विभूतियों को हम कितना याद करेंगे। आने वाला समय ऐसा होगा जिसमें आपके भाग्य को देखकर लोग आपकी भी पूजा करेंगे, आपके भगत आएंगे और आपके भाग्य को देखकर वो भी अपने आप को भाग्यवान अनुभव करेंगे। वो दिन दूर नहीं, नजदीक आने वाला है। उस समय को देखने के लिए वर्तमान समय, संगम युग के मौजों का अनुभव करना, संगम युग में परमात्म मिलन करना, हर घड़ी को ईश्वरीय मिलन से सफल करना, और हर दिन को इस तरह जीना कि जैसे हम एक नया इतिहास लिख रहे हैं, हम कल्प कल्प का ड्रामा बना रहे हैं, हम 84 जन्मों के अपने सुखों के सौभाग्य का लेखा जोखा तैयार कर रहे हैं, हम सृष्टि के आधार मूर्त आत्माएं, हम पूर्वज और पूज्य आत्माएं, हमको देख करके लाखों करोड़ों यानी कि पूरा संसार ही हमारे पीछे चलने वाला है, हम कल्प वृक्ष को हरा भरा करने वाले हैं, जो कल्प वृक्ष शुष्क प्राय हो गया है, जो सूख गया है उसको हम हरा भरा करने वाले हैं, हम वो महान आत्माएं हैं जो सारे संसार के लिए आचार विचार आचार संहिता तैयार कर रहे हैं, नई दुनिया को नीति रीति और प्रीति सिखा रहे हैं, हम वो आत्माएं हैं जो संगम युग में इस शरीर में रहते जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कर रहे हैं, सारे बंधन हमारे टूट गए हैं, ना लौकिक ना अलौकिक, चाहे वो सुनहरे हो, सोने की जंजीरें हो, चाहे वो चांदी की हो, लोहे की हो, तांबे की हो, कोई भी हो, कोई जंजीर स्वीकार नहीं। ऐसे हम विभूतियां हैं, हम श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा है, श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा है। भाग्यवान, सब भाग्यवान है ना, सब भाग्यवान है। पद्मा पदम भाग्यवान कौन है? पद्मा पदम भाग्यवान, एक बार अपने लिए अभिनंदन कीजिए, ताली बजा लीजिए। ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान इस संगम युग के हर पल को आनंद लेने के लिए आप सब मधुबन में आए हैं। आज अपने अनुभव से इस प्रभु मिलन की जो मेले का आपको चांस मिला है, यहां पर भी सफल करें और यहां से जाने के बाद हमारे संगम युग का एक एक पल वो आनंदमय गुजरे, आनंद के साथ बीते और कल्प कल्प का हम अपना इतिहास लिख लें, युगों युगों तक जिसको जमाना याद करे, वो चीज करना है हमको, अपनी दिनचर्या को बनाना है। आप सब कर रहे हैं पुरुषार्थ, हो सकता है आज के दिशा दर्शन से आप सबको कोई एक नई रूपरेखा मिलेगी, एक लाइफलाइन भी मिलेगी, गाइडलाइन भी मिलेगी और आपको आगे निरंतर इस संगम युग को यादगार बनाने के लिए आपको और भी कुछ इशारे मिल जाएंगे। तो तैयार हैं आप सब? तैयार हैं परिवर्तन के लिए? तैयार हैं केवल सुनेंगे? कौन करते हैं कि मैं सुनूंगा भी और करूंगा भी? करेंगे कौन? सब करेंगे? पक्का? पक्का करेंगे? तो इसके लिए भी एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाएं, दृढ़ संकल्प के लिए। कोई भी काम को करने के लिए सबसे पहले आवश्यकता है वो है दृढ़ता की, दृढ़ता, जो आज बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प करो। लेकिन दृढ़ संकल्प भी टूट जाता है, उसका कारण क्या? आज बाबा ने कहा क्योंकि उसको रिवाइज नहीं करते हैं। रिवाइज करें और क्या करें? और क्या करें? रियलाइज करें। रिवाइज भी करें और रियलाइज करें। रियलाइज माना रियल आई खोलें, अपनी अपनी जो वास्तविक आंखें हैं, ज्ञान नेत्र हैं, वो खोलें और रियलाइज करें। तो रियलाइज करेंगे, दृढ़ संकल्प चाहिए। समय समय पर अगर हम दृढ़ संकल्प नहीं लेते हैं तो वो हमारे संकल्प जो लिए होते हैं वो टूट जाते हैं। दिनचर्या को मजबूत बनाने के लिए सवेरे सवेरे ही दृढ़ संकल्प के बेल्ट से अपनी कमर को कस लें और कमजोरियों के रावण को दृढ़ संकल्प की तीली से जला के भस्म कर दें। बाबा ने कई बार कहा, मैं तो अपने आप को, चूंकि ढेर सारे बाबा ने गीत बनवाए हैं, कई गीत कई कविताएं ऐसे हैं जैसे कि उनको सुनते ही एकदम उमंग आ जाता है, जोश आ जाता है, एकदम खून में जैसे गर्मी आ जाए। एक छोटी सी कविता है, लोहा जितना तपता है, लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है और सोने को जितनी आग लगे उतना ही प्रखर निखरता है, हीरे को जितनी धार लगे उतना ही खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तो धुन पर खूब खनकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तो धुन पर खूब खनकता है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, हम शिव की संतानें हैं क्यों सोचे मार्ग सरल होगा, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा, हर मुश्किल का हल होगा, हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं तो कल होगा। अपने को दृढ़ता के संकल्प से उमंग और उत्साह के पंखों के साथ अपनी दिनचर्या का आरंभ करें प्रतिदिन। उसके लिए पहली बात नोट कर लें, जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है, दिनचर्या के आरंभ को हम एक स्वमान ले लें। वो स्वमान ऐसा होना चाहिए जिसमें उमंग उत्साह भी हो, आपको प्रेरणा भी मिले और नवीनता भी हो। लेकिन भाव ये होना चाहिए कि मैं नीचे से ऊपर नहीं जा रहा हूं, बल्कि आज के दिन मेरा अवतार हुआ है, मैं अवतरित हुई आत्मा हूं, मैं अवतरित हुई आत्मा हूं। तो क्या करेंगे? मैं प्रेम का अवतार हूं, मैं शांति दूत हूं, मैं शिव शक्ति अवतार हूं। ऐसा करें सब कोई, ऐसा कर लें, सभी कर लें ऐसा। हाँ, सभी ऐसे करें, भाई भी कर सकते हैं, भाई भी शिव शक्ति हैं, शिव सत्ता भी समझ सकते हैं अपने आप को। ऐसे करें और कहिए, मैं शिव शक्ति हूं, मैं शिव शक्ति अवतार हूं। आवाज नहीं आई, मैं शिव शक्ति अवतार हूं, मैं शिव शक्ति अवतार हूं। बहुत अच्छा। जब इस कॉन्शियस में ऐसे बैठे इस मुद्रा में, या खड़े भी हों वरदानी मुद्रा में, तो उसका स्वरूप बन जाए, दोहराते दोहराते उसका स्वरूप बन जाए। जितना जितना आप उस स्वरूप में बैठेंगे या उस स्वरूप में स्थित होंगे, मैं शिव शक्ति हूं, मैं प्रेम का अवतार हूं, मैं इस धरती पर नए विश्व की स्थापना के लिए, सुखमय समाज की सृजन करने के लिए, रचना करने के लिए मैं अवतार हूं। जितना अच्छा संकल्प स्वमान का होगा और जितना उसके स्वरूप आप बन जाएंगे, एम्बॉडीमेंट ऑफ दैट सेल्फ स्टीम फीलिंग, अपने सेल्फ स्टीम को, स्वमान की, जितने संकल्प को आप बड़े उमंग उत्साह के साथ अपने आप को स्वरूप में टिकाएंगे, वो आपके जीवन का परिवर्तन कर देगा। आज भी बाबा ही कह रहे थे, बाबा की पूरी आज की मुरली, आज के इस टॉपिक का पूरा सल्यूशन है उसमें। उस मुरली को बार बार पढ़ें और दिल से लगाएं, याद भी करें, सुने सुनाएं, अनुभव करें। दिल से लगा के जब अनुभव करेंगे, तब वो आपके लिए जीवन का आधार बन जाएगा। तो क्या करेंगे? रोज सवेरे जब आपका चारपाई से अवतरण हो, तो ये ना अनुभव कीजिए कि मैं चारपाई से उतर रही हूं, चारपाई से उतर रहा हूं, बल्कि अनुभव कीजिए कि मैं वतन से उतर रहा हूं। और कुछ मिनट के लिए, एक दो मिनट के लिए भी, अगर इस स्वरूप में होकर के और चारों तरफ आपने दृष्टि फेरी, दृष्टि डाली, और इस स्वमान के साथ कि मैं शिव शक्ति अवतार हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मैं इस धरती पर नए सुखमय संसार का सृजन करने के लिए आया हूं, मैं महान हूं, मैं मेहमान हूं, मैं मेहमान हूं। जब इस संकल्प के साथ आप दिनचर्या का आरंभ करेंगे, निश्चय ही आप देखिएगा दिन भर में इस शक्तिशाली स्वमान के साथ आपके दिन भर में जो कमजोरी के बोल बोलते रहे, मेरे पांव नहीं चलते हैं, घर वाले सुनते नहीं हैं, मैं कुछ चाहता हूं कुछ होता नहीं है, मुरली सुनता हूं तो नींद आती है, कुछ पॉइंट याद नहीं रहती है, अमृत वेले ऐसा होता है, मेरा मिस होता है, दिन भर की तमाम ये बातें ये समाप्त हो जाएंगी, और आपके स्वमान में, आपके बोल में भी इतनी महानता आ जाएगी और दिनचर्या आपकी महान बन जाएगी। तो क्या करेंगे? स्वमान लेकर के अपनी दिनचर्या का आरंभ करेंगे। ठीक है, आप सबके पास स्वमान बहुत है, आज की मुरली से स्वमान ले लेंगे। एक हफ्ते का स्वमान मैं आपको देता हूं आज की मुरली से। आज की मुरली का स्वमान है, मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूं, मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूं। बहुत बड़ा है, उसका चिंतन करें, कितना बड़ा भाग्य है हमारा। हमसे बढ़कर भाग्यवान इस संसार में कोई हो नहीं सकता। जो परमात्मा पालना, परम शिक्षक की परम शिक्षाएं और परम सतगुरु की वरदान प्राप्त करता हो उससे बड़ा सौभाग्यवान इस सृष्टि पर, धरती पर और कौन हो सकता है। तो ऐसे आप श्रेष्ठ संकल्प ले ले, समान लेकर के फिर अपनी दिनचर्या का आरंभ करें। निसंदेह सारे कमजोरी के आप एक दिन भर में एक बार में 5 बार ले लें और दिन भर में 5 बार ले लें, 25 बार कम से कम हो जाए, जितनी बार हो सके। मैं तो अपने जीवन के अनुभवों में इस बात को बड़ी गहराई से अनुभव करता हूं कि प्रतिदिन जो बोलता हूं, जो सुनाता हूं, वही करने का लक्ष्य। आज भी बाबा ने कहा, जो संकल्प करो उसको प्रैक्टिकल में लाओ, जो बोलो उसको करके दिखाओ। ये दृढ़तापूर्ण संकल्प चाहिए, नहीं तो हम सब कितने वायदे के कितने फाइल हैं। आज बाबा कहते हैं फायदे की फाइल को सामने रखो, वायदे की फाइल अपने आप खत्म हो जाएगी। जब आप संगम युग के महत्व को समझेंगे, ये संगम युग हमारे लिए कितना कीमती है, इसका एक एक पल बाबा कहते हैं कि हमारा एक सेकंड वो दुनिया के एक वर्ष के बराबर है, एक वर्ष के बराबर है। समय कितना कीमती है हमारे लिए, हमारे लिए जितना समय कीमती है उतना संसार की किसी व्यक्ति के लिए नहीं। मैं हंसी में कहता हूं, कभी कभी कोई गाड़ी में जा रहा हूं और उसमें बैठा हूं, बाहर की गाड़ी है और वो गाड़ी बहुत तेज से चला रहा है, तो मैं उसको ड्राइवर को बोलता हूं, भाई धीरे धीरे चला, अगर कुछ हो गया तो तुम्हारा तो कुछ भी होने वाला नहीं, तो जल्दी जन्म ले लेगा, और हमारा अगर कुछ हो गया तो हमारा 84 जन्मों का पार्ट पूरा हो जाएगा, इसलिए जरा संभाल के चलाओ। तो हम सबको जानबूझ के, नहीं कि आ बैल मुझे मार, अपने जिंदगी को ऐसे ही गंवा देना है। ये संगम युग बड़ा कीमती है। कई भाई बहनों को मैंने देखा है कि वो अपने इस संगम युगी जीवन की महानता से, कितना वैल्यूएबल है जीवन, ये बड़ा अनमोल है, इसको संभाल के चलाना है, उसकी परवाह नहीं करते। बीमार हैं, कहते हैं खा पी लो, शुगर है तो क्या हुआ, ये है तो क्या हुआ, संगम युग बार बार थोड़े आता है, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि उनकी लापरवाही उनको बिना बुलाए मौत को निमंत्रण दावत दे रहा है। इसलिए संगम युग के इस जीवन को बहुत ही वैल्यूएबल समझकर इसका पल पल सफल करना है। मैंने कहीं देखा था, बाहर भी कहते हैं, दुनिया में भी कहते हैं, दुनिया में कहते हैं अगर एक साल की कीमत पूछनी है, एक वर्ष की कीमत पूछनी है, तो उस विद्यार्थी से पूछो जो एक नंबर से फेल हो गया हो, उसको साल भर पढ़ना पड़ा हो, उससे पूछो क्या होता है। और एक मास की कीमत पूछनी है तो उस अपाहिज हुए बच्चे का, जो नया जन्म लिया है जिसने, और वो पूरा परिपक्व नहीं हुआ है और जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाता है, उस बच्चे के भाग्य से पूछो जो एक मास पहले ही जन्म ले लिया और सारे जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाता है, उसके लिए एक मास की कीमत कितनी है। एक सप्ताह की कीमत पूछनी है तो उसे पूछो जो वीकली मैगजीन का संपादक हो, अभी 6 दिन बीत गया हो और अभी तक पत्रिका छपी ना हो, तो सोचता है कल मैं क्या दिखाऊंगा, कहां जाऊंगा, कैसे करूंगा, बड़ी बेचैनी हो जाती। एक दिन की कीमत पूछनी है तो दिहाड़ी की मजदूर से पूछो जो बेचारा दिन भर कमाता है फिर शाम को खाता है, आज कुछ भी कमाया नहीं, खाएगा क्या। एक घंटे की कीमत पूछनी है तो इंटरव्यू वाले से पूछो जो गया हो, जिसका बहुत वैल्यूएबल इंटरव्यू हुआ हो और ना हुआ हो। एक मिनट की कीमत पूछनी है तो फ्लाइट वाले से पूछो, या उस ट्रेन फर्स्ट क्लास ट्रेन वाले से पूछो जो पहुंचे और उसके 1 मिनट पहले ही ट्रेन चली जाए और देखता रहे कि गाड़ी छूट गई। और एक सेकंड की कीमत पूछनी है उसे पूछो जिसके सामने से गाड़ी आए और निकल जाए और 1 सेकंड के लिए वो बच गया। और 1 सेकंड के 10वें 100वें भाग की कीमत उस ओलंपिक के खिलाड़ी से पूछिए जिसने 4 साल मेहनत की और 4 साल मेहनत करने के बाद भी 1 सेकंड के 10वें भाग से, या कहिए 100वें भाग से, वो गोल्ड मेडल से चूक गया। उसका कीमत कितना है? एक सेकंड के दसवें भाग से सोवें भाग से कीमत। और हम सब राजयोगियों से पूछो जिनका एक एक सेकंड एक एक वर्षों के बराबर है कीमती? कौन समझते हैं हमारा इस संगम युग बहुत कीमती है ना? कीमती बहुत वैल्यूबल है, बहुत वैल्यूबल है। तो जो हर पल ये समझ करके कि विश्व नाटक में मेरा हीरो हीरोइन का पार्ट है, हर पल मेरा इतिहास लिखा जा रहा है, हर दिन एक नया उपहार बन के आया है, हर दिन मुझे एक नया जीवन जीना है, दुनिया को आदर्श देना है, आने वाली पीढ़ियां हमें याद करेंगी, हमें याद करेंगी। और मैथिली शरण गुप्त की एक कविता है जिसमें मनुष्यता में लिखा है, उसमें वही है कि विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी, हुई न यूं सुमृत्यु हो तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, मनुष्यता की बात सुनाई। तो हम सब एक एक पल हमारा ऐसा रहे जो मरणोत्तर गुंजित गान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न रहो न निराश मन करो मन को, अपने को ऐसा करें कि हमारी फिल्म जब दिखाई जाए जीवन की, तो मैं भी अगर देखूं तो मेरा मन प्रसन्नता से भर जाए, ऐसा ना हो कि ना ना ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जियो ऐसा जियो कि जिसमें कुछ उमंग हो, उत्साह हो, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, जेबों में भरकर आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज जैसा तेज नहीं पर दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तो मुझको कब तक रोकोगे, तो मुझको कब तक रोकोगे, तो मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर भी मृत्यु से जीवन खींचा है, पत्थर पर लिखी इबारत हूं, पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तो मुझको कब तक रोकोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तो मुझको कब तक रोकोगे, तो मुझको कब तक रोकोगे, तो मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं, इस जग में जितने जुल्म नहीं उतनी सहने की ताकत है, तानों के शोर में रहकर भी सच कहने की आदत है, मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोको। विघ्नों से बाधाएं आए, विपत्तियां आए, लाख मुश्किल आए, लेकिन मन से कभी हारना नहीं, और यही कहना, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं, मैं अपने हाथों रचा हुआ, तुमसे मिटने का खौफ नहीं, तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना निखरूंगा, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। प्यारे भाइयों और बहनों, समय बड़ा अनमोल है, हमारी सारी दादियां चली गई हैं अव्यक्त रूप में हमारे बीच में, लेकिन यहां व्यक्त से अव्यक्त हो गई, समय इशारा दे रहा है। कभी बाबा कहते थे अगली दिवाली नहीं आएगी, कभी कहा जाता था लेट हुआ है, टू लेट नहीं, लेकिन अब तो पता नहीं क्या कहना चाहिए, सब कुछ तो बीत गया, अब रहा क्या। लेकिन पुरुषार्थ करने वालों के लिए भी अभी भी समय है, कहीं टू लेट का बोर्ड ना लग जाए, इसलिए जागो, समय पहचानो, कोई और दूसरा कोई व्यक्ति नहीं आएगा, जागो हे राम, उठो द्रौपदी, अब तुमको कृष्ण बचाने के लिए नहीं आएंगे, शस्त्र उठाओ और लड़ो, क्योंकि तुमको विजयी बनना है। इसलिए समय के इशारे को देखकर अब अपने आप को तैयार करना है, चलना है अपने मंजिल की ओर। तो पहला एक सुमान ले लें, रोज अपनी दिनचर्या के लिए परिवर्तन करें। आज से जो भी दिनचर्या बीता वो बीता, लेकिन अब से ले लें संकल्प। पहला संकल्प उठते ही, जब आपकी आंख खुलती है, सामने आप ऐसा प्रबंध कर लें कि मेरी आंख जाए, नजर जाए तो सामने बाबा पर पड़े। स्टिकर वहां लगा दें, कास्केट लगा दें, बाबा का फोटो ऐसा लगा दें कि इन आंखों को आदेश दे दो कि दिनचर्या का आरंभ में आज मुझे किसी देह को, किसी देहधारी को देखना ही नहीं, पहली दृष्टि मुझे मेरे बाबा से मिलना है, मुझे अपने बाबा को देखना है। और पहली दृष्टि शुरुआत करें, बाबा को देखें और बाबा की प्रेम से, उसके परम प्यार से अपने आप को पहली नजर में, पहली दृष्टि में उसके प्यार से अपने आप को भर ले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, ऐसा लगता इंतजार में बैठे आप अकेले, ऐसा लगता इंतजार में बैठे आप अकेले। पहली नजर में देखकर दृष्टि प्यार से भर लेते हो, पकड़ के उंगली साथ में अपने बाबा ले लेते हो, संगम युग में संग आपके लगे मिलन के मेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, ऐसा लगता इंतजार में बैठे आप अकेले, बैठे आप अकेले। रोज सवेरे उठें और बाबा के प्यार से अपने आप को भरपूर कर लें, पहली दृष्टि का प्यार। नमस्ते कर लें, और नमस्ते चेतना के साथ, वो नींद वाला नमस्ते नहीं रोज गुड मॉर्निंग करते हैं, हाँ बाबा बाबा गुड मॉर्निंग, वो लाइन नहीं, वो नहीं है। सब देखते हैं ना, सब रोज करते भी, अनुभव भी है, लेकिन पूरा जागृत होने के साथ, कौन सवेरे आया है, कौन मिल रहा है, किसके सामने मैं हूं, मेरे सामने कौन है। प्रभु तुमको निहारने को दिल चाहता है, दिल में उतारने को दिल चाहता है, तुम सामने हो हमारे, तुम साथ में हमारे, तो भी पुकारने को दिल चाहता है। पल को न बंद होना, पल भर न जाने देंगे, पल ये न जाने देंगे, मिले कल्प बाद हमको, अब हम जुदा न होंगे, अब हम जुदा न होंगे, ऐसे बाबा से कहते, बाबा के प्यार में, पहली दृष्टि में स्वयं को संपन्न कर लीजिए। दूसरा समान में ले लें कि मैं शिव शक्ति हूं, मैं अवतार हूं, मेरा अवतरण हुआ है, ठीक है, समान ले लेंगे। फिर तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है दिनचर्या के परिवर्तन के लिए, वो है आज से अमृत वेला। हम अगर संगम युग के रूहानी मौजों का अनुभव करना है तो उसका बेस्ट टाइम है अमृत वेला। अमृत वेला आप जानते हैं, देखते भी हैं, कई कई भाई बहने 2 बजे उठ जाते हैं, उसके पहले उठ जाते हैं, 1 बजे ही उठ जाते हैं, उठ जाएं भले उठ जाएं, लेकिन ऐसा ना है कि आप तो उठ गए उमंग के साथ, लेकिन 4 बजे तक आने आते आते आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाए और फिर दिन भर में आप झुटका खाएं, गुस्सा करें, झुंझलाहट हो, आवेश हो, ऐसा ना होना चाहिए। बल्कि क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि जो हमारे यहां मुकर्रर टाइम है, बहुत जल्दी अर्ली ना भी उठ सकें तो 4 से 4:45 बजे तक का जो योग फिक्स है, जो टाइम फिक्स है, इसको ऐसा याद में बैठें, ऐसी लगन के साथ बैठें, एकाग्र चित्त होकर के बैठें, परमात्मा प्यार में लव लीन अवस्था में बैठें कि आपका 1.25 घंटा आपके जीवन का आधार बन जाए और अमृत वेला इतना शक्तिशाली बन जाए कि दिनचर्या में माया आपका कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सके। जिसको भी अमर बनना है, ईश्वरीय ज्ञान में अमर बनना है, उसको अमृत वेला, अमृत पान करना है, अमरनाथ बाबा से अमृत पी करके सवेरे सवेरे उठकर। तो क्या आप साथ देंगे, कम से कम जो हमारे सामने बैठे हैं, जो सुन रहे हैं, वो संकल्प लेंगे कि आज से अमृत वेला पक्का नागा गए, बिना जाया गए, रोज रेगुलर करेंगे। लंबा हाथ उठा लें, उठाएं, हाँ लंबा हाथ उठाए, हाँ लंबा हाथ, अब ये शिकायत नहीं होनी चाहिए कि मेरा मिस हो जाता है, आपने, मैं तो नीचे किया ही नहीं, आपने नीचे कर लिया है। हाँ, लंबा हाथ उठाए, लंबा हाथ उठाए, बहुत अच्छा। एक बार अपने अभिनंदन करें, बहुत उमंग की उत्साह के लिए। जिसने अपनी दिनचर्या में अमृत बेले को पक्का कर लिया, जो शक्तिशाली बन गया है अमृत बेले, क्योंकि माया को मालूम है कि अगर अमृत वेला ये अमृत पी लेंगे तो दिन भर में हमारी दाल गलेगी नहीं, इसलिए सवेरे सवेरे ही इंटरफेयर करती है। और जिन भाई बहनों ने, दादियों ने ही दिखाया, दीदी मनमोहिनी ने दिखाया, मुझे याद है 83 से पहले की बात है, मैं रात को 11 बजे जा रहा था और दीदी सिरोही से आई रात को 11 बजे, और सवेरे जब याद में बैठता हूं हिस्ट्री हॉल में तो देखता हूं दीदी बैठी है और दादा विश्वरतन बैठे हैं, दीदी और दादा है बैठे हैं। मेरी तो एकदम रोमांचित हो गया मैं कि रात को दीदी 11 बजे आई, कब सोई होगी, और सवेरे 4 बजे मेरे से पहले दीदी बैठ गई। उसी दिन मैंने पकड़ लिया कान कि आज से अमृत वेला मधुबन में कभी भी मिस नहीं होने दूंगा। और आज 45 वर्ष हो गए, आपके सामने बैठे हैं, यहां पर मुलाकात होती रहती है, यही वो जगह है। एक बार जी अभिनंदन कर सकते हैं। जी जी, तो अमृत वेला आज पक्का करें, क्योंकि हमारे अलौकिक जीवन का कोई अमृत वेला मिस करे और रूहानी मौज का अनुभव कर ले, हो सकता है, हो सकता है। जिसका फाउंडेशन ही कमजोर है वो आगे पेड़ पर चढ़ेगा क्या, जिसका न्यू ही नहीं। तो अमृत वेला बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। अब दूसरी मुश्किल ये होती है कि अमृत वेला जब बैठ जाते हैं भाई बहने तो उनको निद्रा बहुत आती है, नींद बहुत आती है। उसके बहुत कारण है, ढेर सारे कारण है, लेकिन बाबा कहते हैं कारण नहीं सोचो, निवारण सोचो। निवारण क्या है? सवेरे बैठ जाए, हमारी तरह बैठे, देख रहे हैं आप सब, पांव पर पांव रखने का ये देख रहे हैं, कब से मैं बैठा हूं, देखिए ये आसन बहुत अच्छा है। तो बाबा कहते बच्चे आराम से बैठो, बाबा कोई आसन, कोई हठ योग नहीं सिखाता है। ये हठ योग नहीं है, लेकिन खुद को भी तो पता लगे कि मैं याद के लिए बैठा हूं या ऐसे बैठा हूं। ऐसे बैठ सकते हैं, बहने बैठ सकते हैं, भाई बैठ सकते हैं, जो बैठ सके ऐसे बैठे, जरा जरा बैठ लें। ये आपको आसन निद्रा मुक्त रखेगा। इस आसन बैठे ऐसे, सामने देखें, सामने देखें, सिर जो है आपका थोड़ा ऊपर रहना चाहिए। हाँ, जैसे थोड़ा भी झुके तो माया चांस ले लेगी। सामने देखें, बाबा को देखें, और मीठी दृष्टि लेकर बाबा के प्रेम से बाबा को अपलक देखिए, निर्निमेश। ये सबसे सुहाने है पल जिंदगी के, मिलन सिंधु में जब समाये हुए हैं, जमाना तो क्या तेरी यादों में भगवन, ये तन मन भी अपना भुलाए हुए। गगन झुक गया, वक्त भी ठहरा ठहरा, जमी भी ये जैसे जमी रह गई, रूहानी समा देखते देखते ये आंखें खुली की खुली रह गई। इस तरह बाबा को देखते हुए बाबा की प्यास से बैठ जाएं और अपने को अनुभव करें कि मैं धरती पर नहीं हूं। एक सेकंड के लिए आप ऊपर मत जाइए, ऊपर जाते हुए बहुत दिन हो गए, अभी तक जल्दी कोई ऊपर जा ही नहीं पाता। योग में बैठते हैं जल्दी वापस आ जाते हैं। अब क्या करना है? अब सबको नीचे भेज देना है और खुद परमधाम में अनुभव करना है कि मैं परमधाम में बैठ गया। ये करेंगे ना, ऊपर जाने की मेहनत मत करें, बल्कि ऐसा अनुभव करें कि एक विमान आया, आज जो बाबा ने स्नेह का विमान याद किया, उस विमान से हम आ गए वतन में और वतन में बैठ गए, और वो विमान छोड़ दिया, विमान गया, नीचे गया। और नीचे देखिए वो हमारे शरीर को भी लेकर गया, शरीर नीचे जा रहा, नीचे जा रहा, नीचे जा रहा है, एकदम कहीं पर धरती नाम का प्लैनेट है और वहां कहीं भारत है, भारत में कहीं राजस्थान, उसमें भी कहीं आबू है, वहां कहीं शरीर दूर नीचे है और मैं तो वतन में बाबा की किरणों के नीचे। हम जब से आए आपकी किरणों के नीचे ज्यों आ गए हैं शीतल शीतल झरनों के नीचे, ऐसे बाबा की किरणों के नीचे झरनों के नीचे बैठ जाएं और आनंद से अपने आप को भर लें। दिनचर्या का आदि आपका अगर स्ट्रांग होगा पावरफुल होगा तो आप दिनचर्या में कहीं पर भी कोई कमजोरी का अनुभव न करेंगे। मुझे याद है यही जगह है ब्रजमोहन भाई जी को देखता हूं, उनको पांडव भवन में देखता था मैं 84 से देखता था, 84 में पांडव भवन में दिल्ली पांडव भवन में वहां भर योग कराते थे। और ये वही जगह है जहां पर लास्ट दिन जिस दिन ब्रजमोहन भाई गए हम भी यहीं बैठे थे और भाई जी से दृष्टि लिया लास्ट में और भाई जी गए। उनका पक्का इतना था कि पल पल सिखाया उन्होंने कि कुछ भी हो 2:15 बजे उठ करके 2:30 से 3:30 तक दादी अपने कॉटेज में वहां योग करना और यहां पर 3:15 बजे आना और 4:45 बजे तक यहां पर योग कराना, दृष्टि देना, ये सिखाया। दीदी ने सिखाया, दादी जानकी जी ने सिखाया, उन सबका संकल्प है और उनके संकल्पों को पूरा करना हमारा काम है। आपको एक बार और बधाई देना चाहता हूं इसके लिए आप संकल्पबद्ध हुए। दूसरा एक ले लें, तीसरी बात हो गई, चौथी बात हो गई मुरली, मुरली महावाक्य, उसको ओढ़ना बना लें, बिछौना बना लें, वही बार बार पढ़ें, अपने जेब में पॉइंट्स रखें, दिन भर में जैसे मौका मिले, भोजन कर रहे हैं तब सामने रख लें, याद कर लें। लेकिन तब तक आपको रुचि नहीं होगी जब तक आप उस ज्ञान की पॉइंट्स को औरों को सुनाएंगे नहीं, उसको औरों को सुनाइए। जितना आप औरों को सुनाएंगे तो पॉइंट्स वो याद आएगा। आज की मुरली को 2-3 दिन से उसके सोमान के 7 दिन के लिए हमने टॉपिक बना लिया सोमान का, आपको भी बताया ना, वो 7 पॉइंट नोट कर सकते हैं। पहला है मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूं आज के लिए। कल का है मैं सर्व बंधन और बोझ को बाप के हवाले कर जीवन मुक्त डबल लाइट स्थिति का अनुभव करने वाला हूं, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाला, मैं जीवन मुक्त हूं। ये दूसरे कल के लिए टॉपिक ले लें। तीसरे दिन के लिए टॉपिक ले लें कि मैं ईश्वरीय संस्कार से दैवी संसार बनाने वाली आत्मा हूं। फिर ले लें कि मैं दुआओं के द्वारा तीव्र गति से उड़ने वाली आत्मा हूं। फिर मैं सहज योगी आत्मा हूं। फिर आप नोट कर सकते हैं मैं पवित्रता की श्रेष्ठता का अनुभव कराने वाली आत्मा हूं। जो वरदान है, जो स्लोगन है, उनको याद करके उनको नोट कर सकते हैं। मैं सर्व की दुआओं में दुआ देने वाली और दुआ लेने वाली आत्मा हूं। ऐसे करके एक हफ्ते का टॉपिक बना लें आज की मुरली से और रोज ही एक सोमान लेकर पूरे दिन का दिनचर्या का आरंभ करें, अभ्यास करें। पांचवी बात है कर्म योग। चलते फिरते ऐसे हाथ करें, सबको ही ऐसे करें, अनुभव करें कि बाबा यहीं पर हैं, मेरे सिर पर हैं, बाबा की लाइट के नीचे मैं चल रहा हूं, निरंतर चल रहा हूं बाबा की लाइट के नीचे, छत्र छाया में चारों तरफ अंधेरा है लेकिन मेरी राह में बाबा ने उजाला किया है। गाड़ी में बैठे हैं, भोजन खा रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, एक ही बाबा किरणे और मैं आत्मा, बाबा किरणे और मैं आत्मा, बाबा किरणे मैं आत्मा, ये अभ्यास करें। भोजन के समय पर भी बाबा को यही अभ्यास करें, निरंतर अभ्यास करें, एक ही अभ्यास करें, इतना अभ्यास करें कि दिन भर में 20 बार 25 बार 50 बार हो जाए। आप देखें यही एक अभ्यास आपको अंत में अंत मत्ते सगते बना देगा। अंत में कुछ और नहीं, या शरीर छूट रहा है यही याद रहे बाबा मेरे ऊपर है, बाबा की छाया के नीचे मैं हूं, उसकी छत्र छाया मेरे ऊपर है, मैं उसकी छाया में पल रही हूं, मैं चल रही हूं। एक ही समय, ढेर सारे अभ्यास हैं लेकिन ये कर लें, कम से कम एक अभ्यास 5 स्वरूपों वाला कर लें मेरे साथ, कर लेंगे सभी करेंगे, ऐसा करें जैसा मैं करूं ऐसे करें और बोलें भी, मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा। हाँ, कहें भी और करें तो याद रहेगा, मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, फरिश्ता पधारा। और छठी बात है एकांत में बैठना, चार्ट लिखना। बाबा अक्सर मुरली में कहते हैं कि बच्चे चलते चलते चार्ट छोड़ जाते हैं। आप में से कोई है जो चार्ट रोज रेगुलर लिखते हैं? लिखते हैं, जो लिखते हो वो जरा हाथ उठाएं। लिखने वाले रेगुलर लिखते हैं, बहुत अच्छी बात है। मुझे तो याद है मैं कक्षा 9 में था तब से चार्ट लिखता हूं और अभी तक आज जो भी मुकाम मिला है, जो भी मुझे अनुभव हुए हैं और जो भी भाग्य प्राप्त हुआ है, मैं उसका श्रेय देता हूं कि चार्ट बराबर लिखता रहा, दादियों को देता रहा और आज तक भी बिना चार्ट लिखे सोता नहीं हूं। ये रेगुलर करता हूं और मैं आपसे भी अपेक्षा करता हूं कि आप भी रेगुलर चार्ट लिखेंगे तो निस्संदेह आप बाबा के श्रीमत में सफल होंगे। बाबा आप बहुत प्यार करेगा, इधर आप चार्ट लिखते हैं और बाबा उधर देख के मुस्कुराता है कि बच्चा मेरा कहना मान करके काम कर रहा है, तो ये आपको बहुत अच्छी सिद्धियां देगा। और अंत में सातवीं बात, लास्ट बात है कि दिल से रात को सोने से पहले सबसे क्षमा मांग लें, भूल चुके बहुत, अनजान में भी, जान में भी, ज्ञान में भी, ध्यान में भी गलतियां होती हैं, उसके लिए भी सबसे क्षमा मांग लें और सबको दिल से क्षमा करें विनम्रता के साथ। सबसे यही कहें हैं, कहते हैं यूं जिंदगी का रास्ता साफ कर लिया, माफी किसी से मांग ली, किसी को माफ कर दिया, सबको सबको माफ कर दें। और इस शरीर का, इसका धन्यवाद करें, ऐसे करें, धन्यवाद करें, थैंक यू मेरे शरीर, बड़े काम के हो, बड़े अच्छे हो, बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। और सबका, साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, प्यारे बाबा को सबसे ज्यादा धन्यवाद, थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति।
आप मिले मिट गई मन की सभी चाह, आप मिले मिट गई मन की सभी चाह, खुशियों के गीत मिले मिटी आह आह, प्यास बुझी पाए है सागर अथा, प्यास बुझी पाए है सागर अथा, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, बनाई है माला, नैनों में अपने है हमको संभाला, चुन चुन के मोती बनाई है माला, नैनों में अपने है हमको संभाला, पलकों में प्रभु के है पाए पन्हा, पलकों में प्रभु के है पाए पन्हा, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, करके शक्ति बनाया, निर्धन को तख्त और ताज दिलाया, निर्बल को आकर के शक्ति बनाया, निर्धन को तख्त और ताज दिलाया, स्वर्ग का बनाते हैं हमें बादशाह, स्वर्ग का बनाते हैं हमें बादशाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, बहारों के सुख सारे पाए, हो यादों की बाहों में हमको समाए, स्वर्गिक बहारों के सुख सारे पाए, हर दिस तारों से जीवन की राह, हर दिस तारों से जीवन की राह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, आप मिले मिट गई मन की सभी चाह, आप मिले मिट गई मन की सभी चाह, खुशियों के गीत मिले मिटी आह आह, प्यास बुझी पाए है सागर अथा, प्यास बुझी पाए है सागर अथा, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह।